प्रवचन निर्देशिका की क्लास स्वाध्यायी जिज्ञासु भाई बहनों, कई दिनों के रिलीजियस गैप के पश्चात, क्योंकि कुछ कुछ कार्यक्रम चल रहे थे बीच में, अनेक भक्तगण दूर दराज से आकर के अयोध्या में खूब भक्ति कर रहे थे, और भी कुछ कारणों से ये क्लास बीच में बंद हुई, लेकिन आज पुनः अयोध्या नगरी से आप सभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय करके आप खूब अपने ज्ञान की वृद्धि करें। इसी के साथ प्रारंभ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मक्खन के रूप में भर करके, और इसका नाम पूज्य माता जी ने प्रवचन निर्देश का दिया है, प्रवचन करने वालों के लिए भी और प्रवचन सुनने वालों के लिए भी अत्यंत उपयोगी ग्रंथ। और जैसा हमने पहले भी बताया है, 68 ग्रंथों का सार इसके अंदर भर करके और संपूर्ण विषयों को समाविष्ट कर दिया है। जिन विषयों के लिए आज कुछ विवाद भी हैं, उनका शास्त्रीय समाधान पाने के लिए आप सबके हाथों में यह प्रवचन निर्देश का ग्रंथ है। अब थोड़ा सा ही प्रकरण बचा है, और 2024 के साल तक आप ग्रंथ को के स्वाध्याय को तो परिपूर्ण कर ही लेंगे, लेकिन इसके दो अध्यायों की परीक्षा सन 2025 में जनवरी में होगी, और हम यही विश्वास रखते हैं कि अब आप सब 5 जनवरी के बाद मेंटली प्रिपेयर होंगे, और हम आपकी 5 से 10 जनवरी के बीच में परीक्षा लेंगे। तो हम चलते हैं पेज नंबर 178 पर। ये प्रकरण चल रहा है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। सभी लोगों के पास अपनी अपनी शैली है, अपना अपना प्रकार है और अपना अपना अनुभव है, लेकिन आगम का एक अपना तरीका होता है कि हम जिस ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर रहे हैं या जिस ज्ञान को दूसरों को देना चाहते हैं, वह पूर्वाचार्यों से एकदम अनुस्यूत अनुबद्ध हो, तब उस ज्ञान के अंदर प्रामाणिकता आती है। तो ऐसे अनेक प्रकरणों को आप पढ़ चुके हैं। एक तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका के रूप में है, और आज से लगभग 800-900 साल पहले जिसकी टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी ने किया है, उस श्लोक वार्तिक ग्रंथ को भी आप तो मूलक सिद्ध कर रहे हैं। मतलब कि इन आचार्यों की वाणी भी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से संबद्ध है, इस बात को बताते हुए कह रहे हैं। संप्रदाया व्यवच्छेदा विरोधा ददुना नराम सद्गोत्रादिपदेशोत्र यद्वत् तद्वत् विचारतः प्रमाण मागमः सूत्र माप्त मूलत्व सिद्धितः। ये तत्वार्थ श्लोक वार्तिक की मूल में प्रश्न नंबर 8 का उद्धरण दिया। इसका मतलब ये है कि संप्रदाय परंपरा अर्थात परंपरा के व्यवच्छेद का अविरोध होने से यह सूत्र आगम प्रमाण है, क्योंकि ये आप्त मूलक सिद्ध। आप्त मूलक का मतलब क्या है? आप्त माने ईश्वर, सच्चे सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी भगवान को ही आप्त कहा गया है, और उन आप्त की ईश्वर की कही हुई वाणी के अनुसार ये श्लोक है। जैसे आजकल मनुष्यों के सद्गोत्र आदि का उपदेश प्रवाह रूप से पाया जाता है, उसी प्रकार से विचार करने से यह सूत्र रूप आगम पूर्णतया प्रमाण भूत ही है। जैसे कहते हैं जातियो अनादियः, या जैनेन्द्र प्रक्रिया नाम के व्याकरण के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने सूत्र बनाया सिद्धो वर्ण समाम नाया। तो ये क्या अनादि काल से वर्णों का समुदाय अनादि काल से सिद्ध है, जैसे ऐसे जातियों का समुदाय भी अनादि काल से सिद्ध है। तो उसमें कहा है किन जाति आदि का उपदेश प्रवाह रूप से पहले की परंपराओं से चला आ रहा है, ये कहीं से पैदा नहीं हुई है। जो आप समझते हैं कि अग्रसेन से अग्रवाल पैदा हो गए, खंडेला से खंडेलवाल पैदा हो गए, पद्मावती को मानने से पद्मावती पुरवाल, ऐसे ही सब लोगों ने अपनी भ्रांत धारणा बना ली है। वास्तविकता ये है कि ये सब जातियां प्राचीन काल से अनादि काल से चली आ रही हैं। इनके नामों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भले ही हो जाता है, लेकिन आज भी फूलमाल 25 नाम की एक जयमाला आती है, उसके अंदर 84 जातियों के बराबर नाम मिलते हैं। तो जैसे प्रवाह रूप से जातियां चली आ रही हैं, ऐसे प्रवाह रूप से भगवान की वाणी चली आ रही है, चाहे वो तत्वात श्लोक वार्तिक है, चाहे अष्ट सहस्त्री है, चाहे षटखंडागम है, कसाय पाहुड़ है, इन ग्रंथों को पूर्णतया प्रमाण भूत मानना चाहिए, इस बात को बताया है। इसके अंदर ज्ञानमती माता जी हीरे मोती की तरह से चुन चुन करके आगम की वाणी को लाकर रखती हैं। कसाय प्रावृत ग्रंथ के प्रति भी वे लिखती हैं कि स्वयं जय धवलाकार प्रस्तुत ग्रंथ के गाथा सूत्रों और चूर्णी सूत्रों को किस श्रद्धा और भक्ति से देखते हैं, ये उन्हीं के शब्दों में देखिए। एक स्थान पर शिष्य के द्वारा ये शंका किए जाने पर कि कैसे जाना, इसके उत्तर में श्री वीर सेनाचारी कहते हैं, देखो इस प्रकरण को कठिन मत मानना, आचार्य गुणधर स्वामी हुए जिन्होंने कसाय प्रावृत नाम के ग्रंथ में प्राकृत सूत्र लिखे और उनकी टीका की है आचार्य वीर सेन स्वामी ने। 8वीं शताब्दी में लगभग वीर सेनाचार्य हुए, उनके हाथों से बहुत काम हुए, उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की टीका लिखी, उन्होंने कसाय पाहुड़ की जय धवला टीका लिखी और उन सभी ग्रंथों को उन्होंने बताया कि भगवान महावीर की वाणी से इनका सीधा संबंध है। तो वीर सेनाचार्य क्या कहते हैं, एदम माधो बिउलगिरी मथ यथ बड्डमान दीवार दिवाय रादो मिणिक गमी गोदम लोहज जम्बु सामियादि आईरिय परंपराए आगंतूण गुणहरा इरियम पाविय गाहा सरुवेण परिणमीय अज्ज मंखुणा गहत्थीहितो जय वसह मुहनय चुन्निसुत्ता यारेण परिणद दिवज्झुणी किरणादो नववदे। ये प्राकृत है, प्राकृत और संस्कृत भाषा अपनी जैन भाषाएं हैं। आज कुछ लोगों ने प्राकृत को तो जैनियों की भाषा कह दिया और संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा कह दिया, ये गलत है। जो हमारे गौतम गणधर स्वामी हुए भगवान महावीर के समक्ष जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया, उन्होंने सबसे पहले चैत्य भक्ति को संस्कृत में रचा। जयति भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता, जिस चैत्य भक्ति को रोजाना माता जी गणधर वाणी के रूप में आपको बताती हैं वो संस्कृत में है। प्राकृत में उन्होंने गणधर वाले मंत्रों को रचा, प्राकृत में प्रतिक्रमण के दंडक सूत्रों को लिखा और संस्कृत के अंदर वीर भक्ति की रचना की, श्रावक के प्रतिक्रमण और मुनियों के प्रतिक्रमण को प्राकृत में लिखा, थोस्वामी स्तमन लिखा, सामायिक दंडक पाठ को प्राकृत में लिखा। तो मतलब ये है प्राकृत संस्कृत भाषा ये जैन शासन की वर्तमान में समझने वाली भाषाएं हैं और बाकी भगवान की दिव्यध्वनि से जो अनक्षरी दिव्यध्वनि निकली उसके अंदर सारी भाषाएं समाविष्ट थी। 718 भाषा रूप भगवान की दिव्यध्वनि परिणत हुई थी। सब ने, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे फ्रांस वाले थे, चाहे जर्मनी के थे, चाहे प्राकृत जानने वाले, संस्कृत जानने वाले, सब ने अपने अपने भाषा में उस दिव्य ध्वनि को समझ लिया। यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी अपनी भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ लिया कि भगवान और कुछ नहीं, हमारे हित की बात कर रहे हैं। उन्हीं के लिए वीर सेनाचार्य कहते हैं क्या कि विपुलाचल के शिखर पर, विपुलाचल कहाँ है, राजग्रही में, राजग्रही तीर्थ पर विपुलाचल पर्वत है, जहाँ पंच पहाड़ी कही जाती हैं, उसमें से विपुलाचल पर्वत है, उसके शिखर पर विराजमान वर्धमान दिवाकर अर्थात महावीर को सूर्य की उपमा दी है। उनसे प्रकट होकर के गौतम स्वामी, लोहाचार्य, जम्बू स्वामी आदि की आचार्य परंपरा से आकर और गुणधर आचार्य को प्राप्त होकर गाथा स्वरूप से परिणत हो पुनः आर्यमंक्षु और नागहस्ती के द्वारा यति वृषभ को प्राप्त होकर और उनके मुखकमल से चूर्णी सूत्र के आकार से परिणत दिव्य ध्वनि रूप किरण से जानते हैं। देखो आप, वीर सेनाचार्य की भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, प्रमाणिकता कि वे अपने गुरुदेव जिनके ग्रंथ, जिनके सूत्रों पर टीका लिख रहे हैं उनके प्रति कितनी श्रद्धा, अगाध श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि भगवान महावीर की वाणी से चले आए सूत्रों को, ज्ञान को जिन आचार्य गुणधर स्वामी ने प्राप्त किया उनकी ही वाणी को हम यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। अब आप स्वयं देखो कि मान लो ज्ञानमती माता ने शांति सागर महाराज से ज्ञान प्राप्त किया या प्रेरणा या आशीर्वाद प्राप्त किया, आज वो हमारे सामने मौजूद हैं, तो हम भी तो कहते हैं कि जिन्होंने इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य की वाणी को प्राप्त किया, उनके दर्शन किए, जिन्होंने उनके प्रथम शिष्य वीर सागर महाराज से दीक्षा ली, ऐसी ज्ञानमती माता के पास में बैठ करके और उस ज्ञान सूर्य की किरणों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो यह अपना सौभाग्य है। इसी प्रकार से प्रामाणिकता को बताने के लिए वीर सेनाचार्य ने भगवान महावीर की वाणी से सीधा संबंध बताया कि कसाय पाहुड़ का भी सीधा संबंध है। बात आती है सठ खंडागम और कसाय पाहुड़ की, तो सठ खंडागम से पहले का कसाय पाहुड़ है और गुणधर आचार्य और धर सेनाचार्य भी लगभग समकालीन है। गुणधर आचार्य का ज्यादा काल प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन समकालीन माने जाते हैं। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि कसाय प्रावृत ग्रंथ साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि तुल्य है, ऐसा टीकाकार का कथन है। दूसरी बात यह है कि आचार्य परंपरा की महत्ता पर पूर्ण प्रकाश दिख रहा है। जिस आचार्य परंपरा में हमने दीक्षा पाई, जिस आचार्य परंपरा में हमने उपदेश को पाया, उस परंपरा का उपकार अपने को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जब समीचीन ज्ञान प्राप्त हो जाए तो समझो कि उससे बड़ा उपकारी गुरु हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो भव्यात्मा, इसलिए इन सब ग्रंथों को पढ़ने का अपना क्रम होता है और जब विद्वान इनको पढ़ करके श्रावकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाएं, तो समझो कि उस प्रमाणिकता के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वे श्रोताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अगर उनकी श्रद्धा स्वयं डगमगा रही है तो वो भला आपको श्रद्धास्पद, श्रद्धानी कैसे बना सकते हैं। तो इन प्रकरणों को देखकर जानना आप कि कसाय पाहुड़ की गाथाओं को जिनके अंदर अनंत अर्थ गभाओ, जिनके गर्भ में अनंत अर्थ छिपा हुआ है, हम भले ही ना समझ पाए, हम उसको थोड़ा बहुत समझ सकें, लेकिन नद्या नव घटे जलम, नदी के जल को अगर सीसी में भर लिया, नदी तो बहुत बड़ी है लेकिन अगर उसके जल को, गंगा नदी के जल को सीसी में भर लिया तो गंगा का जल ही तो कहलाता है ना, और बड़ी श्रद्धा से उसको यूज करते हैं। इसी प्रकार से गंगा जल के समान पवित्र वाणी को प्राप्त करके आप सबको भी पूर्वाचार्यों के प्रति दृढ़ श्रद्धा करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहिए। अब आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के भी मंगल आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। जब लो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की।